समान समाधान।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, वनकम, सुस्वागतम एंड पधारो इन योर फेवरेट शो समाधान। मित्रों, कल हमारे एक दर्शक ने एक शिकायत भरा मेल भेजा था कि भगवान मदद नहीं करते जब आवश्यकता होती है। तो हमारी शिकायतें बहुत होती हैं भगवान से, और हम कभी ऐसी आशा या उम्मीद नहीं रखते कि भगवान भी शायद हमसे कुछ शिकायत करेंगे। लेकिन आज भगवान ने भी एक शिकायत भरा संदेश हम तक भेजा है, वो मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगा कि उन्हीं हमसे क्या शिकायत है। वो कहते हैं कि मैं ऊपर वाला बोल रहा हूं, जिसने ये पूरी दुनिया बनाई वो ऊपर वाला। हमेशा तुम मेरी शिकायत करते हो, आज मैं कुछ शिकायत कर रहा हूं तुमसे। घर का ध्यान तुम नहीं रखते, और चोरी हो जाए तो तुम कहते हो ऊपर वाला तुमने ये क्या किया। गाड़ी तुम तेज चलाते हो और धक्का लग जाए तो कहते हो ऊपर वाले ये तुमने क्या किया। पढ़ाई तुम नहीं करते और फेल हो जाते हो तो कहते हो ऊपर वाला। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में होने वाले हर गलत काम के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। और आजकल तो एक नया फैशन शुरू हो गया है, जो काम तुम नहीं कर सकते हो ऐसा कहते हो कि आप भी ये काम नहीं कर सकते। ये कहते हो कि ऊपर वाला भी भ्रष्टाचार नहीं मिटा सकता, ऊपर वाला भी महंगाई नहीं रोक सकता। ये सब क्या है? भ्रष्टाचार किसने बनाया? क्या मैंने? किससे रिश्वत लेते देखा तुमने मुझे? मैं तो हवा, पानी, धूप आदि सबके लिए बराबर ही देता हूं। कभी देखा क्या कि ठंड के दिनों में किसी अमीर आदमी के घर पे मैंने तेज धूप कर दी हो, और गर्मी के दिन में सिर्फ उसके घर में ही बारिश कर रहा हूं? उल्टा तुम मेरे पास आते हो रिश्वत की पेशकश लेकर, कभी लड्डू, कभी पेड़े, कभी चादर, और मेरे नाम पे तुम पूरा डब्बा तो खरीदते हो लेकिन एक टुकड़ा मुझ पे चढ़ाते हो और बाकी तुम खुद खा जाते हो। ये महंगाई किसने बनाई? क्या मैंने? मैंने सिर्फ जमीन बनाई, उसे प्लाट बनाकर बेचा तुमने। मैंने जानवर बनाए, उन्हें मवेशी बनाकर बेचा किसने? मैंने पेड़ बनाए, उन्हें लकड़ी कहकर काटा और बेचा किसने? मैंने तो इंसान को बनाया, लेकिन धर्म, जाति ये सब किसने बनाए? मैंने आज तक तुम्हें कोई वस्तु नहीं बेची, किसी वस्तु का पैसा नहीं लिया। सब चीजों में कसूर तुम मेरा निकालते हो। अभी भी समय है, सुधर जाओ, वरना फिर मत कहना ये प्रलय क्यों आई। एक शिकायत भरा संदेश ऊपर से आया है मित्रों, जिस पे हम सबको सचमुच विचार करना है कि भगवान ने सब कुछ हमें समान रूप से दिया है, शायद बंटवारे या शायद ये जो प्रदूषण आदि चीजें हैं वो सब हमने क्रिएट किए हैं, और इसे ठीक भी हमें करना है। बहुत गंभीर सी शिकायत है जिस पे विचार अवश्य करना है। आइए इस पर भी विचार करें और साथ ही समाधान की शुरुआत करें स्वागत के साथ आदरणीय दाता जी का। दाता जी, बहुत बहुत स्वागत है।
थैंक्स।
ईश्वर से शिकायत का कोई अंदेशा नहीं था कि ऐसा हो सकता है?
हाँ, पर बड़ा अच्छा किया। कम से कम उसने तो मनुष्य को एहसास कराया तुम क्या कर रहे हो और मैं क्या करता हूँ। एक्चुअली तो सत्य तो यही है कि भगवान क्योंकि परफेक्ट है, तो उसने जब दुनिया बनाई इट वॉज परफेक्ट
जी,
कुछ भी कमी नहीं थी। ये न महंगाई, न भ्रष्टाचार, न पुलिस, न कोर्ट, न ये दवाइयां, न डॉक्टर्स, कुछ भी नहीं था। परफेक्ट, हर चीज परफेक्ट, गुण सारे, शक्तियां सारी, कलाएं सारी, नैतिकता फुल, चरित्र फुल, प्योरिटी फुल, लेकिन मनुष्य ने गड़बड़ की। उन चीजों में मिलावट करना प्रारंभ किया। एक व्यक्ति दूध बेचता था, जब ईमानदारी थी वो ईमानदारी से बेचता था, फिर उसने देखा दूध तो बड़ा गाढ़ा है, अरे चलो 5 किलो पानी एक कैन में मिला लिया, किसको पता 5 किलो पानी मुफ्त का और पैसे मिल जाएंगे बहुत सारे। लोग ने शुरू कर दिया ये सब खेल, लोग ने बिगाड़ा, विकारों ने बिगाड़ा। तो परमात्मा तो ये देख करके ये सब दोष मेरे पे मढ़ रहे हैं, हमें बताना चाहता है कि गलती तुमसे कहां हुई, पर वो तो पुनः हम सबको ठीक करने के लिए आ गया है। चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, उसने बता दिया कि जब तक मनुष्य भ्रष्टाचारी नहीं बनेगा, कानूनों से भ्रष्टाचार को मिटाया नहीं जा सकेगा। हम सब सुनते आए कितने प्राइम मिनिस्टर्स ने इसको मिटाने का प्रयास किया, कानून बने लेकिन ये बढ़ता ही गया, क्योंकि मनुष्य भ्रष्टाचारी है। मनुष्य में बहुत ज्यादा विकृतियां आ गई हैं, उसमें लोभ वृत्ति बढ़ गई, वो सोचता है पैसा चाहिए, जैसे चाहे कमा लो। तो भगवान तो सचमुच सबको सुख देने वाला है, उसके पास कोई पार्शियलिटी नहीं है, वो तो इम्पार्शियल है, सबको समान रूप से देता है, मनुष्य उसका बंटवारा करता है। तो हम सचमुच भगवान की शिकायत पे ध्यान दें और जहां तक संभव है अपने में चेंज लाएं, ताकि हमें भी फिर कोई शिकायत करने की बात रहे नहीं। अगर हम अपने को चेंज कर लेते हैं, अगर हमें संपूर्ण ज्ञान मिल जाता है, तो हमें पता चलता है कौन सी बात कहां क्यों हो रही है, फिर भगवान को या किसी और को दोष देने का प्रश्न नहीं उठता है।
बिल्कुल बिल्कुल। और शिकायत क्या कहें बेटा जी, ये तो एक सावधानी से उन्होंने दी है कि ये शायद तुम गलत कर रहे हो, इसे ठीक करने की ही आवश्यकता है। और ज्यादातर आजकल बेटा जी प्राकृतिक प्रकोप भी जब आते हैं, तब भी व्यक्ति सोचता है कि ये भगवान ही कर रहे हैं।
इसके बारे में तो सोचता ही है, क्योंकि यहाँ तो मनुष्य की कोई पहुँच है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो देखिए, भगवान ने अपनी बात कहते हुए कितनी सुंदर बात याद दिलाई, गाड़ी तुम तेज चलाते हो, शराब पी के तुम चलाते हो, एक्सीडेंट होता है तो मुझे दोष देते हो, जैसे कि मैंने ये सब गलती की हो। कितनी अच्छी बात है, मनुष्य रियलाइज कर ले, अपने कर्मों को सुधारे, तो शिकायत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गाड़ी ठीक चलाएं, अपनी लेन में चलें, शराब आदि न पिए, कंट्रोल्ड स्पीड रखें, तो क्यों एक्सीडेंट होंगे। लेकिन लोग गलती करते हैं, तो सारी गलतियां मनुष्य से हो रही हैं, भगवान तो उन्हें सुधारने आता है, और इस टाइम वो आके सद्ज्ञान दे रहा है। तो ये जो प्राकृतिक प्रकोप संसार में हो रहे हैं, हमने पहले भी चर्चा की थी, कटाई बहुत हुई, ये भी बहुत जा रही है गंदी गैसें, जो और सारा प्रदूषण कर रही हैं आकाश में, ओजोन में होल कर दिए, बीमारियां बढ़ने लगी उससे। तो यहाँ मनुष्य कहीं ना कहीं दोषी है। देखिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से जो गंदा पानी है, तेल, बहुत सारी चीजें जमीन में जाती हैं, चलो ड्रिल करके उसको 500-700 मीटर नीचे भेज दिया, पर गई तो जमीन में ना, वो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ करेंगी ही। तो भले ही इस फील्ड के जो वैज्ञानिक हैं, वो उसका बहुत सारा कारण गिना रहे हैं, भाई ये प्लेट टकरा गई, ये अंदर में ये गड़बड़ हो गई, और इस पर क्योंकि किसी का अधिकार नहीं है, तो लोग सोचते हैं ये तो भगवान के कंट्रोल में है और भगवान ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन जैसे पहले भी हम एक चर्चा कराए थे, मैंने उदाहरण भी दिया था कि जैन फिलोसोफी में ये बहुत एक सूक्ष्म और गुह्य सिद्धांत है कि जब इस धरा पर मर्डर बहुत होने लगते हैं, तो उनकी जो निगेटिव वेव फैलती है, उससे भूकंप बहुत आते हैं। तो नेपाल आदि देशों में क्या आप सब जगह ही हो रहा है, कट रहे हैं जानवर, लेकिन वहाँ लोगों ने बलियां बहुत दी, बलि, भैंसों की बलि, उनके बच्चों की बलि, ये बलि, देखिए एक की बलि दी जाए तो भी बात, कहा कितने हजारों की बलि दी गई, तो उससे बैड वेव्स बहुत फैलती है ना। चलो ये बहुत बड़ा पाप कर्म है, उन्होंने धर्म के नाम पर ये कराया, पर मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा, धर्म के जो आचार्य हैं उन्हें इसके विरुद्ध आंदोलन उठाना चाहिए। मैं तो साफ कहता हूँ कि ये सब बलि बलि धर्म के विरुद्ध है, इससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं, लेकिन आप पाप कर रहे हैं, उसके फल के लिए भी तैयार रहो। और आचार्य हमारे देश के अगर इसको उठा लें, तो सचमुच ये सब जगह से बंद हो सकता है। बहुत सारे प्राचीन काल में आचार्यों ने, महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी इसके विरुद्ध आवाज उठाई, और एक लंबा चौड़ा तबका इससे मुक्त हो गया। तो जो ये तांत्रिक क्रियाएं करने के लिए, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए पाप कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जब उन्हें सिद्धियां मिल जाती है, उससे भी वो पाप ही करते हैं, क्योंकि उसका बीज ही पाप का पड़ गया। तो ये सब भी इन भूकंप आदि के बहुत बड़े कारण बनते हैं। लेकिन एक सूक्ष्म आध्यात्मिक रहस्य जो आपके प्रश्न के उत्तर में आज मैं कहना चाहता हूँ, जो बड़ा सूक्ष्म एक सीक्रेट है, इसको जानना भी आवश्यक है। चारों युग की कहानी को अगर हम लें, सत्युग त्रेता, दो युग यहाँ देवयुग था, देव सभ्यता थी, देवता पवित्र थे, देव सभ्यता पूर्ण हो गई, देवताओं ने अपनी प्रारब्ध पूरी कर ली, त्रेता का एकदम एंड आ गया, देवता वाम मार्ग में चले गए, वासनाओं में चले गए, तो पवित्रता थी एकदम अपवित्रता हो गई, तो अपवित्र वाइब्रेशंस पवित्र प्रकृति में गए और वाइब्रेशंस के बीच में टकराव हो गई और त्रेता के अंत में भी एक बहुत उस समय के लिए बड़ा विनाश हुआ, भूकंप हुए, धरती हिली, ऊपर का बहुत सारा जो कल्चर थी वो नीचे चली गई। ऐसे ही द्वापर युग से फिर मनुस्पतिक बना, प्रकृति रजो फिर तमो हो गई। अब प्रकृति तमो है और भगवान आया है इसको प्योर बनाने, तो इधर से प्योरिटी के वाइब्रेशंस जा रहे हैं, वो इम्प्योर वाइब्रेशंस को बाहर फेंक रहे हैं। ये भी एक इन विस्फोटों का कारण है और ये अब होना ही है। जैसे कल भी डिक्लेयर कर दिया वैज्ञानिकों ने कि एक मास तक ये झटके आते रहेंगे, तो ये लंबा काल चलेगा, क्योंकि इसी से ये प्रकृति पुनः तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेगी। ये एक आध्यात्मिक रहस्य है, क्योंकि मनुष्य ने बहुत पाप कर लिया है, काम वासना की अति में चला गया है मनुष्य, तो इस प्रकृति में विस्फोट होना नेचुरल बात है।
बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक बहुत ही गुह्य सा एक रहस्य आपने स्पष्ट किया व्रता जी, और जो भी हो रहा है यही हमारे कर्मों के परिणाम ही है, या परिणाम स्वरूप हम ये सारी चीजें जो देख रहे हैं आपदा आदि। लेकिन एक मन में एक चिंता का भाव या एक अच्छा या शुभ संकल्प रहता है व्रता जी की, चलिए सब चीजें हों, लेकिन इतना जो उठापटक वाली स्थिति या तबाही वाली स्थिति है, बिना इसके यदि परिवर्तन सब कुछ हो जाता तो बड़ा अच्छा होता, मन में कहीं ना कहीं ईश्वर से ऐसी प्रार्थना रहती।
क्योंकि मनुष्य बड़ा भावुक भी है, वो रहमदिल भी है, वो कितना पाप करे फिर भी अकल्याण तो नहीं चाहता है। लेकिन अब ये इस वर्ल्ड ड्रामा का विधान ही है, और ये महाविनाश और ये प्रकृति का परिवर्तन और ये युग का परिवर्तन हर कलयुग के अंत में होता ही आया है। इसलिए मैं समझता हूँ जो भगवान के महावाक्य हैं उसके अनुसार हम जानते हैं कि इसको रोकना अब संभव नहीं होगा, लेकिन इससे हम कैसे सेफ रहें, इसकी विधि शिव बाबा ने अपने महावाक्यों में बताई है।
जी, तो वो क्या है?
देखिए, वो पहले तो जिस एक बात पर हम बहुत जोर देते आते हैं, मैं तो खास बहुतों के अनुभवों से उस बात को मतलब प्रायोरिटी देता हूँ कि मनुष्य को पुण्य कर्म बहुत करने चाहिए। मनुष्य जब पाप करता है तब वो बड़ा खुश होता है, और जब उसका उसको फल भोगना पड़ता है तो वो बहुत दुखी होता है। चलो उस कर्म की तो बात छोड़ो, देखिए एक पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आया जिसको डायबिटीज थी, लेकिन उसने न तो कभी डायबिटीज की दवाइयां केयरफुल्ली ली और न खान पान का ध्यान रखा। डायबिटीज है तो है, जो आया खाता रहा, मीठा मिठाइयां रसगुल्ले और सब खाता रहा हो। अब यह हाल हुआ कि उसके बॉडी का हर अंग बेकार हो गया। अब डॉक्टर एक चीज को ठीक करता है, दूसरी बेकार, दूसरी को ठीक करता है, तीसरी बेकार पड़ी है। अब उसको ठीक करना, उसको जीना मुश्किल हो गया। बेड पर है, श्वास की नली लगी हुई है, लिक्विड खाना दिया जा रहा है, मरने की जीने की कोई उम्मीद नहीं, कब मरेगा कब जिएगा कुछ पता नहीं। तो देखिए, उसने खाने का आनंद लिया तो जीवन नष्ट कर लिया, मतलब बड़ी आयु नहीं है, 35 साल हो गए मुश्किल से, जीवन नष्ट कर लिया। तो यही बात कर्मों के पीछे है कि कर्म मनुष्य पाप करता है तब वो बड़ा एंजॉय करता है कि वाह पैसा बहुत आ गया, लेकिन जब उसका फल उसके सामने आता है तो उसकी दुर्गति होती है। इसलिए पहली चीज, इनसे इनके प्रकोप से बचने के लिए हमें पुण्यों का खाता बहुत बढ़ाना चाहिए। दूसरी चीज, अध्यात्म के मार्ग में स्वयं भगवान ने अपने महावाक्यों में हमें कहा कि धरती हिलने लगे तो तुम भागदौड़ ना करो। मनुष्य डरता तो है ही उस टाइम और भागदौड़ करता है, ये नेचुरल है, वो भागना नहीं चाहता, पर जब वो देखता सभी भाग रहे हैं तो वो कहाँ बैठेगा, वो भागेगा।
कल हम टेलीविजन में देख रहे थे व्रता जी, नेपाल के संसद में वहाँ के शायद प्रधानमंत्री भाषण कर रहे थे, और जैसे ही ये भूकंप आया तो जितने भी वहाँ के सांसद थे वो भागदौड़ करने लगे, कोई इधर भाग रहा कोई उधर, तो भागदौड़ तो शायद
होती है, मनुष्य डर जाता है। लेकिन भगवान ने क्या कहा कि जब धरती हिलने लगे तुम योग युक्त होकर स्थिर हो जाओ। ये बहुत सूक्ष्म चीज है, हालांकि ये काम वही कर सकेंगे जिन्होंने लंबे समय तक ये साधनाएं की हैं। तुम इस अभ्यास में आ जाओ, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, इस संपूर्ण प्रकृति का मालिक हूँ, और सर्वशक्तिमान यहां मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है तो प्रकृति तुम्हें सेफ रखेगी। ये प्रकृति का काम हो जाएगा कि जब हम योग युक्त हैं तो हम उसके मालिक हो गए, तो हमें उसे बहुत कुछ देना है इसलिए वो हमें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये बहुत सुंदर बात कही। इसलिए अध्यात्म के द्वारा, पावर ऑफ प्योरिटी के द्वारा, पुण्य कर्मों के द्वारा हम इनके प्रकोप में सुरक्षित रह सकते हैं और प्रकृति को बहुत अच्छी मदद भी कर सकते हैं। ये आध्यात्मिक की एक और सुंदर बात है कि कुछ पवित्र आत्माओं के और जो योग युक्त रहते हैं बहुत ज्यादा, उनके वाइब्रेशंस प्रकृति को फिर से एनर्जेटिक करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, जैसे धरती को उपजाऊ करते हैं, वातावरण को क्लीन करते हैं, प्रकृति फिर से सुखदायी हो जाती है। तो इसीलिए शिव बाबा ने आकर स्वयं योग सिखाया और पवित्रता का पाठ पढ़ाया और याद दिलाया तुम लंबा काल तक पवित्र थे, इन वासनाओं के कारण ये सब हो रहा है। क्योंकि सच तो यही है, जिस बात को लोग नहीं जानते नहीं मानते, श्रीमद् भगवत गीता में कहा, तीसरे अध्याय में ही है, अर्जुन प्रारंभ में ही पूछता है, हे भगवान, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म क्यों करता है, उसे पाप कर्म की ओर कौन प्रवृत्त करता है? तो उत्तर है भगवान का, ये काम ही सभी पापों का मूल है। ये काम वासना से ही मनुष्य पाप की ओर प्रवृत्त होता है। तो अब ये काम वासना बहुत ज्यादा बढ़ गई है मनुष्य के अंदर, छोटों के अंदर भी, इससे सब पाप हो रहे हैं और ये स्वयं भी पापी है। इसके कारण ये प्रकृति अब इस पाप को, पाप के भार को और सहन नहीं कर पाती। जैसे कहा जाता है ना, भाई धरती अब इस पाप को और सहन नहीं कर पाती है, बहुत पाप हो गया है, धरती फट जाए और ये सब समा जाए इसके अंदर। तो ये सिद्धांत है, कुछ यूनिवर्सल ये सिद्धांत है इस सृष्टि के, इस भगवान की क्रिएशन के, उसके विरुद्ध जब मनुष्य जाता है तो ये गड़बड़ होती है।
बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हमें अब श्रीमत की ओर चलना होगा, परमात्मा की मत की ओर चलना होगा, या वो जो हमें आज्ञा देते हैं वो करना होगा, या सीधे सीधे तौर पे या सही शब्दों में कहें तो अध्यात्म की ओर हर एक को बढ़ना होगा, यदि खुद सुरक्षित रहना है और सृष्टि को भी सुरक्षित रखना है। तो चलिए कामना रखेंगे भ्राता जी कि अब फिर से और ज्यादा ऐसे भूकंप ना हो, जो भी हो सहज और सरल रूप में हो और हर एक आध्यात्म की ओर बढ़े। मैं कुछ प्रश्नों की ओर लिए चलता हूँ भ्राता जी, हमारे पास कुछ मेल आए हैं। पहला मेल पूजा जी का है, ये हरियाणा से हैं। ये कहती हैं भ्राता जी कि मैं पिछले कुछ समय से ज्ञान मार्ग में चल रही हूँ और मेरी समस्या ये है कि जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मेरा पूरा शरीर गर्म हो जाता है, इतना ज्यादा गर्म कि मैं उसे सहन भी नहीं कर सकती हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? ये एक नई चीज आज सुनने को मिली कि शरीर गर्म हो जाए योग। वैसे योग अग्नि है ये तो सुना था, लेकिन शरीर गर्म हो जाता है ये नहीं पता था।
कभी ऐसे कृषि जाते हैं सामने, कईयों को ऐसी बैड फीलिंग होती है, शरीर गर्म हो गया या सिर दर्द बहुत ज्यादा हो गया, सिर भी गर्म हो गया योग करने। योग जब हम शुरू करते हैं और आत्मा पर पहले फोकस करते हैं, अपने चित्त को शांत करते हैं, तो देखिए जिस मनुष्य को पहले से बहुत ज्यादा सोचने की आदत है, अब उसने सोचना एकदम बंद किया तो ब्रेन में भी भिन्न तरह के रिएक्शन प्रारंभ हो जाते, क्योंकि वो उसके जो नेचर उसने बना दी उसके विरुद्ध हो गया ना, वो बहुत तेज चल रहा था और अब ये व्यक्ति उसको शांत करने लगा है। ये संभव है कि इस जन्म से पहले ऐसे लोगों ने कुछ ऐसी साधनाएं की हो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी साधनाएं योग में, तंत्र मंत्र में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, अग्नि प्रज्वलित होने लगी, अग्नि निकलने लगी, उसका उन्होंने प्रयास किया हो तो बॉडी अब गर्म हो जाता हो उनका, वो सिद्धि उन्हें यहाँ राजयोग से प्राप्त हो गई हो, ये भी इसके कारण होते हैं। लेकिन इसका सुंदर सा और सरल सा समाधान यह है कि वो अभ्यास करे, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, या मैं एक जो बहुत अच्छा शब्द देता हूँ, मैं पवित्रता की देवी हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ, और मुझसे बिल्कुल कूल वाइब्रेशंस, बिल्कुल शीतल शांति और शीतलता की तरंगे ब्रेन को जा रही हैं, पूरे देह में फैल रही हैं। कुछ देर ये अभ्यास कर लेंगे, एक एक मिनट करें, आत्मा चमकती हुई ज्योति, परम पवित्र किरणें, शीतल किरणें ब्रेन को जा रही हैं, बॉडी को जा रही हैं, ऐसा अभ्यास जब ये योग करें उससे पहले 5 बार यानी 5 मिनट ऐसा अभ्यास कर लें तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनकी ये फीलिंग समाप्त हो जाएगी। साथ साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम भी इन्हें कर लेना चाहिए रोज 10 मिनट। ये जो है
जी,
इससे क्या होता है, ब्रेन को ऑक्सीजन जाती है और ब्रेन से ये सब कुछ चीजें उत्पन्न होती हैं, तो ब्रेन भी एक बैलेंस की स्थिति में आ जाएगा और ये चीज ठीक हो जाएगी।
बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कितना समय तक ये वाला अभ्यास करें प्रताप जी, जो आपने बताया?
ये तो इनको देखना होगा कि इनकी ये बीमारी कितनी लंबी है, पर मैं समझता 21 दिन में काफी ठीक हो जाएगा।
जी जी। एक ऐसी ही समस्या रिहाना जी की है प्रताप जी, अब ये कह रही है कि जब भी मैं योग करती हूँ तो मेरे पूरे शरीर में कपकपी होने लगती है, कई बार सुबह भी कई बार शाम को भी जब मैं योग करती हूँ तो ये स्थिति बनती है, विशेष करके जब मैं योग में ही बैठती हूँ तब ये मेरी हालत हो जाती है। क्या इसका कोई गहरा रहस्य है और ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए?
नहीं, और रहस्य की बात नहीं, जैसे बहुत लोगों के बॉडी में करंट हो जाता है, कोई उन्हें छू नहीं सकता, करंट लगता है एकदम से, क्योंकि बॉडी में करंट तो है ही, वो ब्रेन से पैदा हो ही रहा है और पूरे बॉडी में फैलता रहता है। ये जो हमारा देह है ये एक बहुत सुंदर फैक्ट्री है ना, इसमें एनर्जी का फ्लो भी है, तो ब्लड का फ्लो भी है, तो ऑक्सीजन का फ्लो भी है, तो इलेक्ट्रिसिटी का भी फ्लो है इसके अंदर, फैक्ट्री है ना, उसमें सब चीज चाहिए ना। देखो, हवा भी चाहती है एक फैक्ट्री में, तो बिजली भी चाहती है, पानी भी इसमें बहुत ज्यादा है और रॉ मटेरियल भी दिया
जाता है। इनके शरीर में करंट ज्यादा है
तो इनके शरीर में या तो करंट ज्यादा है, शरीर की रचना में कुछ ऐसी चीज है पहले से कि जब ये कंसंट्रेट करती है तो ब्रेन में उस तरह का रिएक्शन होता है जैसे हमने चर्चा की, और उसके कारण इन्हें कपकपी होती है। इसके लिए सिंपल सी प्रैक्टिस कर ले, मैं मास्टर ऑल नाइटी हूँ, सवेरे उठते ही 7 बार याद करे, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ और अब मेरा शरीर भी स्थिर और स्ट्रांग है, या मैं इस कपकपी से मुक्त हूँ, ऐसे संकल्प सवेरे उठ के करे और 21 दिन तक ऐसी साधना करे सारा दिन, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरा शरीर स्थिर है, तो बस ब्रेन की जो भी इसमें गड़बड़ थी वो उसको फिर से रिगेन कर लेगा और शरीर भी स्थिर हो जाएगा और ये कपकपी वाली स्थिति
दूर हो जाती है। कई लोग कहते हैं जब मेडिटेशन शुरू करते हैं तो ऐसे विपरीत अनुभव उनको होते हैं, जैसे कोई चल फिर रहा है या कोई उस चित्र से ही कोई बाहर निकल के आ गया है, या मैं इस शरीर से अलग किसी और दूसरी दुनिया में जा रही हूँ, कहीं उड़ रही हूँ, कहीं पहुंच गई हूँ या पहुंच गया हूँ, तो ये सारी स्थितियां होती हैं। तो कई बार व्यक्ति डर जाता है, घबरा जाता है कि ये सारी फीलिंग क्या है और क्या हम सही सही मेडिटेशन कर रहे हैं, सही दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, कहीं कुछ मानसिक स्थिति में ऊपर नीचे ना हो जाए, ऐसे भी भ्रम की स्थिति बन जाती है, तो यहाँ क्या सजेस्ट करेंगे?
बहुत लोगों को ऐसा होता है कि वो बॉडीलेस हो गए और जा रहे हो, ऊपर तो जा रहे हैं लेकिन डर गए, अब वापस कैसे जाएं? अब उनको ये आता नहीं कि वापस कैसे जाएं, फिर पता नहीं कैसे कैसे लगा के आ गए हम तो ये पूर्व जन्मों में इस तरह की साधनाएं इन लोगों ने की होती हैं।
जी,
देह से बाहर निकल के कहीं जाना या कुछ चीजें निकलते हुए देखना, उसका ये इफेक्ट रहता है थोड़ा बहुत। और योग अभ्यास यदि मास्टर सर्व शक्तिवान की अनुभूति से कुछ समय करेंगे तो ये पूर्व जन्मों के जो भी इफेक्ट्स हैं उन समाप्त हो जाएंगे और एक अच्छे योग की स्थिति बन जाएगी।
जी जी जी, चलिए कामना करेंगे प्रताप जी की रिहाना जी और साथ ही पूजा जी जल्दी ही अपनी स्थितियों से बाहर आ जाएं और सभी बहुत अच्छे योग का आनंद लें। प्रताप जी, अगला मेल हमारे पास आया है, ये कहते हैं, हाउ कैन आई क्योर माई सन हु इज इन डिप्रेशन बट ही इज नॉट एग्रीइंग टू गो टू डॉक्टर और टेक एनी मेडिसिन, प्लीज सजेस्ट मी वॉट कैन आई डू। प्रताप जी, बड़ी समस्या हो जाती है कि बच्चे इस चीज को समझ नहीं पाते कि वो सच में डिप्रेशन में है या मानसिक रूप से उन्हें मदद की आवश्यकता है।
हाँ, और भी वो कुछ स्पिरिचुअली भी करना नहीं चाहते, कई बच्चों की तो ऐसी भी स्थिति है, ऐसी बातें आई, माँ कहती है कि वो बिल्कुल भगवान को मानता नहीं, ये स्पिरिचुअलिटी का ऐसा बकवास की चीजें है, इनको दूर रखो, मैं सुनना भी नहीं चाहता, और वो डिप्रेशन में जा रहा है, न पढ़ाई में ध्यान, उसे को टीवी देख लो, बिल्कुल उदास, सारा दिन सोया रहता है। तो ऐसे में मेडिसिन तो थोड़ी बहुत उसको देनी पड़ेगी, देखिए, लेकिन कोई उसके लिए 1 घंटा योग करे रोज और उसके ब्रेन को एनर्जी दे, तब दे दे जब वो सोया हुआ हो, तो ब्रेन सिर को टच भी न करे, थोड़ा पास रख के मैं मास्टर सर शक्तिवान हूँ ये अभ्यास करके 3 बार, और उसके ब्रेन के पास दोनों हाथ रख दें 1 मिनट, और ऐसा 10 बार कर दें, तो धीरे धीरे उसमें जागृति आ जाएगी।
बिल्कुल बिल्कुल, मतलब भले अभी डॉक्टर के पास ना जा रहे हो लेकिन अपनी तरफ से ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर ली जाए। पता जी, क्यों ऐसी स्थिति बन जाती है बच्चों की? ज्यादातर आजकल बच्चों में या युवाओं में ये देखने में आ रही है टेंडेंसी कि वो डिप्रेशन की ओर बहुत तेजी से जाते जा रहे हैं।
देखिए, मेडिकल साइंस तो इसका कुछ और उत्तर देगी और शायद उसका उत्तर है भी नहीं उनके पास, लेकिन इसका सही उत्तर ये कि मनुष्य जो बहुत सारा पाप कर्मों का खाता अपने साथ लेकर आया है जन्म में
जी,
उसका इफेक्ट उसके ब्रेन पर अब आ रहा है। मनोविज्ञान की भाषा में कि उसके अनकॉन्शियस माइंड से, अनकॉन्शियस माइंड क्यों उसे कहा गया माइंड की उस स्थिति को, कि बहुत सारा जो पाप कर्मों का स्टोर है ना, वो है जैसे वो गोदाम है एक, अब उससे बैड एनर्जी लगातार आ रही क्योंकि उसमें पाप भरे हुए, विकार भरे हुए, तो ये बैड एनर्जी जिनके ब्रेन में ज्यादा आ रही है अनकॉन्शियस माइंड से, उनके ब्रेन पर उनका बुरा असर होता जा रहा है। और कईयों को ये बचपन से ही आनी प्रारंभ हो जाती है जैसे थोड़े बड़े होते हैं, बल्कि बच्चों को भी देखने से लगता है डिप्रेशन में है, उसके चेहरे पे नहीं तो बच्चों के चेहरे पे तेज होता है, एक रौनक होती है, हल्कापन होता है, एक मुस्कान होती है, पर लगता है नहीं कुछ है। तो अगर ये अभ्यास किए जाए ना बच्चों पर भी, तो जल्दी वो जो बैड एनर्जी अनकॉन्शियस माइंड से आ रही है उसका इफेक्ट खत्म हो।
जी जी जी, चलिए प्रता जी, हम भी कामना करेंगे कि इनके बेटे भी बहुत जल्दी अच्छे हो जाएं, क्योंकि माता पिता के लिए बड़ा भारी हो जाता है यदि बच्चे ऐसी स्थिति में रहते हैं। तो आज के सुंदर प्रकाश के लिए प्रता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, एक पूरी की पूरी चर्चा मुझे लगता है कि हमारे पुण्य कर्मों के ऊपर ही केंद्रित है, आध्यात्म के ऊपर ही केंद्रित है, क्योंकि अब कोई और समाधान दिखाई नहीं देता, सूचना भी नहीं कि जो ये चीजें हो रही हैं हमारी चारों तरफ, चाहे वो प्राकृतिक आपदा के रूप में हो रही हैं, चाहे डिप्रेशन की केस जैसे लास्ट में हम देख रहे हैं जो बढ़ती चली जा रही हैं, या कई अनहोनी ऐसी घटनाएं जो हम नहीं चाहते हैं, वो सब चीजें होती चली जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं यदि हम कारण की ओर देखते हैं तो यही लगता है कि हमारी पूर्व के जो कर्म हैं वही अब सामने आके खड़े होते जा रहे हैं, या इस जन्म में भी हमने जाने अनजाने में जो गलतियां की हैं उसका परिणाम अब हमारे सामने आ रहा है। तो क्यों ना हम पुण्य कर्मों की ओर बढ़ें, जिसकी ओर लगातार बहता जी हमारा ध्यान खिंचवाते रहते हैं कि अच्छे से अच्छा कर्म अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से हम करें, और साथ ही अध्यात्म की ओर बढ़ें। जैसे परमात्मा के महावाक्य सुना रहे थे बहता जी कि उनका ये वायदा है कि यदि तुम याद में रहते हो, परमात्मा की योग की अग्नि यदि अंदर प्रज्वलित होती रहती है, तो बाहर की तमाम जो दुविधाएं हैं, असुविधाएं हैं या आपदाएं हैं, उनसे हम सुरक्षित रह सकते हैं और साथ ही दूसरों को भी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। और साथ ही हम लगातार शिकायत तो करते ही हैं भगवान से अपनी छोटी मोटी चीजों के लिए, और कई बार लगता है कि करना भी चाहिए, हम हल्के हो जाते हैं क्योंकि वही तो हमारे अपने हैं ना। लेकिन आज जो उन्होंने हमारे सामने शिकायतें रखी हैं, शिकायत क्या कहूं, शिक्षा है हम सबके लिए, सावधानी है, क्योंकि ये सृष्टि हमारी है, प्रकृति हमारी है, इसकी रक्षा हमें ही करनी होगी। तो क्यों ना हम उन बातों पर भी अमल जरूर करें कि कैसे हम अपनी सृष्टि को, अपनी प्रकृति को सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें, क्योंकि न केवल हमें यहाँ रहना है बल्कि हमारी आने वाली जो संतति है उसे भी यहाँ रहना है। तो क्यों ना इसे हम बहुत अच्छे से अच्छा बना के रखें, अपने कर्मों के माध्यम से भी और साथ ही साथ अपने विचार और आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से भी। बहुत गहरा प्रश्न है मित्रों और चिंतन योग्य विषय है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा और अमल में भी जरूर लाइएगा, ताकि हम अपनी प्रकृति को सुरक्षित रख सकें और संसार को भी श्रेष्ठ और सुंदर बना सकें। कल पुनः मुलाकात होगी इसी वायदे के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कटनी संकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान,
सारा ये जहान
कहता है ये समाधान, समाधान, समाधान।